आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हिमांशी भारद्वाज और मैं एक BAMS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। इस ऑडियो में हम पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने स्थायी और अस्थायी परिवर्तनों को डिस्कस किया था, उन पर विचार किया था और उन्हें हमने कुछ उदाहरणों के आधार पर समझा था। अब हम पेज नंबर 38 पर दिए गए दो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप बुक में देखेंगे कि चित्र 4.4 में एक फ्लो डायग्राम बनाया है परिवर्तन और उसके दो आधार, दो भाग बनाए हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। उन्हीं को हम इस ऑडियो में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला 4.1, भौतिक परिवर्तन। पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि को पदार्थों के भौतिक गुण कहते हैं। पहले इसी पे बात करते हैं कि पदार्थों की आकृति यानी उनकी शेप, कोई टेढ़ा है, कोई गोल है, कोई चौड़ा है, ये उसकी क्या कहलाती है, आकृति, आकार। फिर अवस्था कि वह उसका स्टेट क्या है, गैशियस है, लिक्विड है या ठोस है, सॉलिड है, ठीक है। ताप उसका टेम्परेचर और उसका दाब यानी उसका प्रेशर, ये सभी हमारे भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण। इसे हमने समझ लिया। ये परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, यही जो भौतिक गुण अभी हमने बताए वही जब बदलते हैं तब हम ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी, अनस्टेबल और उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये बिंदुए हैं, आपको याद रखनी है। अब आप बता सकते हैं कि बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनाना, भाप का जल में बदलना इत्यादि भौतिक परिवर्तन है। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें अभी मैंने पढ़ा और बराबर में ही देखिए चित्र 4.5 पर दिया है एक बल्ब जो प्रकाशित हो रहा है। यदि हम इसका स्विच बंद कर दें तो यह अप्रकाशित हो जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि पहला ये भौतिक परिवर्तन है, उसकी अवस्था में बदलाव आया, उसके ताप में बदलाव आया, ठीक है। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल इसमें दिया है नमक का जल में घुलना। अब आप कहेंगे कि ये भौतिक कैसे है, तो देखिए जब नमक उस पदार्थ में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, यदि हम उसको डिस्टिलेशन कराएं या ऊर्ध्वपातन कराएं तो वह वापस अपनी अवस्था में आ सकता है, नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले पेज पर 4.2, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। आपने बहती नदियों के किनारे अथवा तालाब के किनारे पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ देखा होगा। महिलाएं भोजन में ढोकले बनाने के लिए इस खार का प्रयोग करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस खार का निर्माण कैसे होता है? कभी आपके घर में इडली या फिर ढोकला बना है? आपने देखा होगा आपकी मम्मी उसमें एक सफेद रंग का क्षार मिलाती हैं। कभी पूछा है उसका नाम क्या होता है या वह कैसे बनता है? तो हम इसे गतिविधि नंबर 6 के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आइए उसको देखते हैं। एक बीकर को जल से आधा भर लीजिए। इसमें फिटकरी का पाउडर डालिए। फिटकरी आपको घर में मिल जाएगी। इसे हम लोग ज्यादातर शेविंग किट में रखते हैं, जिसमें पापा या दादाजी शेविंग करते हैं, वहां हमें फिटकरी का दाना मिल जाता है, जिसको हम कई बार कट लगने पर खून रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही फिटकरी यहाँ पर लेनी है, मगर पाउडर बनाकर। फिटकरी के इस विलयन को गर्म कीजिए। गर्म करते समय फिटकरी का पाउडर तब तक डालिए जब तक वह उसमें घुलती रहती है। जब घुलना बंद हो जाए तब गर्म विलयन को एक कीप में छन्ना कागज लगाकर, कौन सा कागज, छन्ना कागज या फिर फिल्टर पेपर लगाकर कांच के बीकर या गिलास में उसको छान दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे बिना हिलाए डुलाए स्थिर रखिए। जब वह ठंडा हो रहा हो तो उसको स्थिर रखना है, हिलाना नहीं है। कुछ समय बाद विलयन का अवलोकन कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, आपको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देंगे। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इसको आप गहरा कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टलीकरण कैसा, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यानी ये अपने आप में भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत एक उदाहरण है। क्या? क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। तो हम क्रिस्टलीकरण समझ गए, उसमें हमें शुद्ध क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, वही प्रोसेस हमारा क्रिस्टलीकरण है। चित्र 4.6 में आपको चित्र के द्वारा समझाया है कि क्रिस्टलीकरण हमने कैसे किया। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक बीकर है, बीकर में आधा पानी भरा हुआ है, हमने उसमें फिटकरी का टुकड़ा डाला और फिटकरी का घोल बनाया। ऊपर हमने एक धागे से फिटकरी का टुकड़ा भी डाल दिया। ये पूरा प्रोसेस जो अभी समझाया उसी को चित्र के रूप में दिखाया है, दर्शाया है। यदि आप बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करना चाहते हैं तो एक छोटे क्रिस्टल को धागे से बांधकर विलयन से स्पर्श करते हुए लटकाइए। ये इसीलिए लटकाया हुआ है कि यदि आपको बड़े क्रिस्टल चाहिए तो आप उसको लटका दीजिए। आप देखेंगे कि क्रिस्टल के आसपास अन्य छोटे छोटे क्रिस्टल आकर जुड़ जाते हैं और क्रिस्टल बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्रिस्टलीकरण समाप्त हो गया। अब हम आएंगे भौतिक परिवर्तन के बाद दूसरा कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस। अब हम उसको पढ़ेंगे पेज नंबर 40 पर। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आओ करके सीखें। कितना अच्छा है कि आप इन्हें कर सीख सकते हैं। एक्टिविटी दी हुई है जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि ये वाकई में कैसे होता है। तो गतिविधि नंबर 7 को हम पढ़ेंगे और चित्र 4.7 को साथ में देखते रहेंगे। एक मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखिए। एक कीप लेकर उसे चित्र अनुसार रबड़ की ट्यूब से जोड़ते हुए इसके अग्रभाग पर कांच की नली लगाइए। तो इसे कैसे जोड़ना है, एक रबड़ की ट्यूब से जोड़ते हुए उसके नीचे भाग पर कांच की नली लगा देनी है। कांच की नली को चूने के पानी से भरे बीकर में डुबो दीजिए। और कांच की नली को किस में डुबो देना है, चूने के पानी से, जो बीकर आप लेंगे उसको भरना है, जैसा चित्र में दिखाया है। मोमबत्ती की ज्वाला को नली लगे हुए कीप से ढकिए ताकि मोमबत्ती के जलने से बनने वाली गैस नली में से होते हुए चूने के पानी में आ जाए। आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया यानी दूध जैसा। इस प्रयोग में निम्नांकित क्रियाएं होती हैं। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दूध या पानी, ये आपको रिएक्शन बतौर लिखकर दिखाया है जो ऊपर गतिविधि में अभी हमने होते हुए देखा। उपयुक्त दोनों क्रियाओं से स्पष्ट है कि मोम के जलने से नए पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का निर्माण होता है। क्या पता चला, क्या ऑब्जर्वेशंस आई कि जो अभी हमने ऊपर गतिविधि की उसके अनुसार हमें क्या मिलता है रिजल्ट के तौर पे, कि नए पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प या वाटर वेपर्स का हमें निर्माण होता हुआ नजर आता है। हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो एक और गतिविधि दी है, गतिविधि 8। एक आलू को काटकर दो टुकड़े कीजिए। एक टुकड़े की कटी हुई सतह पर ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन डालिए। आयोडीन का मिश्रण आपको लैब में मिल जाएगा। तो एक आलू काटना है और आयोडीन का विलयन लेकर कटी हुई सतह पर ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन को डालना है। आलू की सतह का रंग नीला हो जाएगा, या आप देख सकते हैं चित्र में दिया है उसी तरीके से होगा। तो आलू में क्या होता है, स्टार्च, और स्टार्च का रिएक्शन जब हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो हमें बैंगनी पदार्थ मिलता है, वही हमारा एक नया पदार्थ है। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस क्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यह एक केमिकल चेंज है जहां पे कुछ नया पदार्थ, नया केमिकल आ जाए, वही हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगले पेज पर आएंगे, पेज नंबर 41, जहां पे एक और गतिविधि 9 आपको दी हुई है। गतिविधि इसीलिए दी जाती है ताकि आप उन्हें अपने टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, खुद करें और समझ सकें। तो गतिविधि 9 पढ़ेंगे। मैग्नीशियम का एक तार फीता लीजिए। मैग्नीशियम का एक तार आपको लेना है। इसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ में जलाना है। मैग्नीशियम का फीता चमकदार प्रकाश देता हुआ जलता है। इसे मैग्नीशियम रिबन भी कह सकते हैं। और इसका जो फीता जल रहा है वह तेज प्रकाश देता हुआ नजर आएगा। और राख मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। हमें इसमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस क्रिया में भी नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको उसमें कौन सा नया पदार्थ मिलता है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चित्र 4.9 में जैसे दिया है गतिविधि को दर्शाया है, ऐसे ही हमको करना है। और नीचे एक रिएक्शन लिख के बताई है, मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं किससे, M बड़ा और G छोटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, क्या मिलता है हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अतः हम कह सकते हैं कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं। ये आपको गहरा कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ये रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा दी गई है। क्या कहा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का, सब्सटेंस का केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वह बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में, बिल्कुल नए अलग पदार्थ में बदल जाता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी केमिकल स्टेट पर चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको केमिकल या रासायनिक परिवर्तन कहा है। ठीक है, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, अतः ये परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। जब एक बार ये घटित हो जाते हैं तो पुनः हम उस स्थिति में इसको नहीं ला सकते हैं, इसलिए इनको गहरा कर लीजिए, स्थायी और अनुत्क्रमणीय कहा है। स्पष्टतः मोमबत्ती का जलना, दही जमना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे का जंग लगना, त्योहारों पर पटाखे व फूलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन है। हमने एक सारणी इसी चैप्टर में पिछले ऑडियो में सारणी में भी डिस्कस किया था कि कौन से स्थाई हैं, कौन से अस्थाई हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और उसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे पढ़ लिए। तो अब आएंगे 4.4, लोहे में जंग लगना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगने की क्रिया से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आप सभी ने देखा होगा कि लोहा कई बार जंग लग के खराब हो जाता है। आपने रसोई घर में देखा होगा कि लोहे के गीले तवे को कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है, लाल लाल हो जाता है ना वो। इसी प्रकार फावड़े, कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को नम वस्तु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें भी जंग लग जाता है। लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर उसके ऊपर भूरे रंग का, कौन से रंग का, ब्राउन कलर का पदार्थ परत के रूप में जम जाता है। इस भूरे रंग के पदार्थ को ही हम जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं, RUST, रस्ट कहते हैं, तथा यह क्रिया जंग लगना कहलाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है। जंग लोहा नहीं है अपितु इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ जंग, लोहे का ऑक्साइड, जंग क्या है, लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये रासायनिक परिवर्तन है लोहे का जंग लगना। इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि कोई भी लोहे का ऐसा पदार्थ जो खुले में रखा हो, जहां मॉइस्चर हो, नमी हो, वह कुछ दिनों में उसके ऊपर एक परत जम जाती है भूरे रंग की, लेकिन वह खुद लोहा नहीं है, लोहे का ऑक्साइड है जिसको हम जंग कहते हैं, Fe2O3। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जंग लगने की प्रक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, कैसे, Fe+O2+H2O gives, ये डंडा लगाया है, लोहे का ऑक्साइड यानी Fe2O3। ये एक रिएक्शन दी गई है किसके लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। यही बॉक्स में कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी का होना अनिवार्य है, यानी ये दो अनिवार्य घटक हैं। जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। क्योंकि लोहे का उपयोग वाहनों जैसे जहाज, कार, ट्रक, साइकिल आदि का ढांचा बनाने के लिए, सेतु या पुल, ब्रिज वगैरह जो बनते हैं, तथा बड़ी इमारतें बनाने में किया जाता है, अतः लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए इसे ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क से बचाना होता है। आप इसे कैसे बचा सकते हैं, कभी सोचा है? इसका एक सरल उपाय है, उन पर पेंट, ग्रीस आदि की परत चढ़ाना है। यानी हम अगर उन्हें बचाना चाहते हैं जंग से, तो उन पे ग्रीस लगा दीजिए या उसको पेंट कर दीजिए, तो उसके ऊपर ये करने से आयरन बचा रहेगा। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते या जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन या गैल्विनीकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहा जाता है, यानी हम उस पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे वह लोहे को गलन से बचाता है या जंग से बचाता है। लोहे के साथ कार्बन, मैंगनीज, निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर इस्पात स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगती, जिन्हें हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें लोहा और लोहे के साथ कार्बन, मैंगनीज, निकेल और क्रोमियम मिले होते हैं, जिसकी वजह से उसको पानी में रखने पे भी जंग नहीं लगता। तो ये है लोहे को जंग से बचाने के कुछ तरीके यहाँ पे बताए हैं। पहला, पेंट या ग्रीस लगा देना। दूसरा, गैल्विनीकरण। और तीसरा, उसमें मिक्सिंग कर देना। किसकी? कार्बन, मैंगनीज, निकेल या क्रोमियम की, ठीक है, जिसका एक उदाहरण है स्टेनलेस स्टील। अब देखेंगे चित्र 4.10 में मेहरौली का लोह स्तंभ दिया है। मेहरौली एक जगह है जहां पे ये लोहे का स्तंभ है, एक खंभा है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भी जानिए, चमत्कारी प्राचीन लोह स्तंभ। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में एक ऐसा प्राचीन लोह का स्तंभ स्थित है जिसे लगभग 400 ईसा पूर्व भारत के लोह कमियों ने बनाया। यह वृत्त स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6000 किलो है। कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी यह लोह स्तंभ आज भी सुरक्षित है तथा इस पर जंग नहीं लगा है। यह इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन भारत के हमारे पूर्वजों ने लोहे को जंग लगने से बचाने की बेहतरीन तकनीक विकसित कर ली थी। शोध से ज्ञात हुआ कि इसके पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड की पतली परत बनी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जंग लगने से बचाने के लिए उन्होंने इस स्तंभ पर कई उपचार प्रक्रम किए होंगे। इसके निर्माण के समय उन्होंने इसमें फास्फोरस मिलाया होगा, इसे विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से रंगा होगा तथा फिर इसे तेज गर्म किया होगा। दिल्ली के अलावा सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा में है जो कि, आदि मुकुम्बा मंदिर, कोल्लूर कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश आदि के भी उत्कृष्ट लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु कर्म की गाथा को उजागर कर रहे हैं। तो ये आपके भारत की एक ऐसी एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चलता है कि प्राचीन काल में भी वैज्ञानिक हुआ करते थे जो इतना अच्छा कार्य करवाते थे, और इतनी अच्छी ये कलाकृति है। तो इसी के साथ हम ऑडियो को समाप्त करते हैं। अगले ऑडियो में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम कुछ और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।